सभी जनों देवियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है। अभी हमने शुक्रवार को विजयादशमी या दशहरा मनाया, जो कि नवरात्र का कल्मिनेशन है। वैसे 9 दिन से जो नवरात्र का पालन करते हैं फेस्टिवल, उसकी कल्मिनेशन में दशहरा या विजयादशमी बोलते हैं, क्योंकि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि होती है। वैसे तो हर त्योहार के पीछे हमारे यहाँ बहुत सारे माइथोलॉजिकल लीजेंड्स को के होते हैं, बहुत सारे स्टोरी जोड़ दिए जाते हैं, और ज्यादातर स्टोरियां जो आपको बताई जाती है या सुनाई जाती है उसका रियलिटी के साथ बहुत कम संबंध होता है। उसका कारण है कि जो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, प्राचीन पर्व होते हैं, वो शुरू में जिस रूप में शुरू हुए, बाद में काफी सारे लिंक हमारे बीच में टूटा, फिर उस लिंक को जोड़ने के लिए हम मिडिवल एज में, खास करके 400-500 साल पहले जो भक्ति मूवमेंट चला देश के अलग अलग सेक्टर दिशा में, नॉर्थ में, साउथ में, तो वो उस भक्ति मूवमेंट्स के कारण नए नए चीजें उसके साथ स्टोरीज नरेशंस जोड़ दिए गए। पर ओवरऑल विजयादशमी का मतलब भी होता है कि फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री, जीतने का उत्सव है, खुशी है। जैसे अभी भी आप भजन के समय भी सुना और पहले भी आप सुनते आ रहे हैं बहुत सारे जगह, कि दशहरा या दिवाली का संबंध राम के लंका युद्ध में रावण को मारने और वापस आने से संबंधित है, पर फैक्चुअली वो बहुत ही इनकरेक्ट है। कितने बार भी बोलो लोगों को समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि वो बीमारी लगी हुई होती है। किसी भी रेफरेंस, ये हमारी कम्युनिटी है, ये भी बड़ी अजीब कम्युनिटी है जी संसार में। ये पहली कम्युनिटी शायद दुनिया में है जो अपनी हर चीज को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रखता है और प्राउडली रखता है, उसको समझाओ भी वो मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। ये भी एक अजीब कम्युनिटी है हमारी और आपकी कम्युनिटी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसका कोई लेन देन नहीं है। अक्टूबर महीने में, शरद के महीने में उन्होंने रावण को मारा या दिवाली के समय वापस आए, जो वाल्मीकि रामायण में रेफरेंस हैं, जो थोड़े बहुत रेफरेंस को मानते हैं, शास्त्रों को रेस्पेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, वो जानते हैं वो चैत्र मास के आसपास का समय जब वो वापस आए, मतलब मार्च अप्रैल में के समय है। एक दूसरा लीजेंड है, जैसे पांडव जब एक्साइल पर थे जुआ के हारने के बाद, उनको 12 साल तक जंगल में रहना पड़ा और 1 साल तक उनको छुपना पड़ा था, अज्ञातवास जिसको आप कहते हैं, तो उसके कारण उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र एक पेड़ में छुपा कर गए थे, जिसको शमी वृक्ष कहते हैं। और जब उनका 1 साल पूरा हो गया, अज्ञातवास पूरा हो गया, तो वो वापस आए, तो वो अपने अस्त्र शस्त्रों को दोबारा लिया, उसको मांझा पोछा है, तो वो भी एक सेलिब्रेशन का डे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे भागों में और एक कारण से विजयादशमी को और एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, और वो होता है फेस्टिवल ऑफ फेमिनिन पावर, शक्ति की पूजा के रूप में, दुर्गा काली के रूप में जो माइथोलॉजिकल गॉडेसेस हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पहले भी हमने बहुत बार बताया, तुम्हारे और हमारे पास वैसे तो मर्द लोग बड़े करते हैं कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, जो कुछ हैं। और आज भी मान लीजिए वो करने के लिए शर्माते हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल मूवमेंट ऐसा है कि वो शर्माते हैं, पर प्रैक्टिस में ऐसा कुछ अभी बहुत लोगों का गया नहीं है, वो बीमारी लगी रहती है। पर प्रॉब्लम है कि आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, हमारे खास करके पौराणिक पुराण कथाओं में जो जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब शक्तियां स्त्री देवी के रूप में आई। आप अगर ब्राह्मण है, विद्वान है, तो आपकी जो शक्ति है, विद्या है, वो सरस्वती के रूप में पूजी जाती है। आप अगर क्षत्रिय हैं, आप जिस शक्ति पर प्राउड फील करते हैं, वो दुर्गा या काली के रूप में पूजी जाती हैं। अगर आप वैश्य हैं, धन के लिए अकड़ते हैं, तो धन की देवी लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं। तो जो अकड़ का जो सोर्स है, जो गर्व का जो सोर्स है, जो शक्ति है वो धन की शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो या एनर्जी की पावर की हो, वो सब देवी के रूप में, फेमिनिन एनर्जी के रूप में प्रसिद्ध है। और ये जो पर्व है उस जो फेमिनिन पावर है, उस फेमिनिन डिविनिटी है, उसको सेलिब्रेट करने का उत्सव है और बड़ा सुंदर उद्देश्य है। देवी और सज्जनों, संसार कभी भी आइडियलिज्म से नहीं चलता है और हमारे ऋषि मुनि इसको समझते हैं। लाइफ में प्रैक्टिकलिटी होना बड़ी जरूरी है, इसीलिए हमारा हर शास्त्र अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। आपको संन्यास लेना है, आपको आत्मा के अन्वेषण में जाना है तो आपके लिए उपनिषद है, दर्शन शास्त्र है। आपको घर गृहस्थी में रहना है, सामाजिक जीवन जीना है, सोशल लाइफ जीना है, पॉलिटिकल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, आपको रास्ता चाहिए तो आपके लिए धर्मशास्त्र, स्मृति शास्त्र है। हर तरह के चीजों के लिए, इवन आपको खाना पकाना है तो उसके लिए भी शास्त्र है। आपको रिलेशनशिप बनाना है उसके लिए भी, लड़ाई करनी है उसके लिए भी शास्त्र है, धनुर्वेद। और जितनी भी मोरालिटी है वो सब रिलेटिवली हो, उनको जज किया जाता है। जो राजा के पास जो वर्च्यूस होना चाहिए, जो धर्म होना चाहिए, जो क्वालिटीज होना चाहिए, वो अगर सन्यासी में आए तो वो सन्यासी नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अगर सन्यासी पॉलिटिक्स करने लगे तो एक करप्ट सन्यासी होता है। सन्यासी के लिए जो क्वालिटीज, जो गुण, जो धर्म चाहिए, वो अगर राजा अपनाए तो उस राज्य को भगवान भी नहीं बचा पाते हैं। मान लीजिए राजा सन्यासी की तरह व्यवहार करे कि सब अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, सबके अंदर आत्मा परमात्मा आत्माएं हैं, सब अच्छा, चोर चोरी कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी आत्मा भी दिव्य है, टेररिस्ट टेरराइज कर रहा है कोई बात नहीं, उसके अंदर की आत्मा भी दिव्य है, तो वो देश बचने लायक नहीं बचेगा, रहने लायक नहीं होगा। तो उसकी क्वालिटीज दूसरे होंगे, सन्यासी की क्वालिटी दूसरे होंगे, गृहस्थ के जीवन के दूसरे होंगे। इसीलिए ज्यादातर जो वेस्टर्न लोग हैं, जो वो एक फ्रेम बना रखते हैं सो कॉल्ड आइडियलिज्म का, और जिसके कारण हिपोक्रेसी बढ़ती है, वो जब समझते हैं हिंदू शास्त्रों को या पूछते हैं कि बताइए आपका सच का डेफिनेशन क्या है, क्षमा का क्या डेफिनेशन है, तो जब उनको पता लगता है कि हमारे यहां ये भी रिलेटिवली डिफाइन किया जाता है। आप योग दर्शन पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन अलग होगा, आप अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन अलग होगा, आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन अलग होगा, मतलब डेफिनेशन सेम होगा पर उसकी जो यूटिलिटी है, उसको यूज करने की, किसकी क्या किस तरह का यूज करना है, उसकी डेफिनेशन अलग होगा। तो उनको समझ में आता नहीं है कि आप तो सब चीजें रिलेटिव थ्योरी में लगा रखते हो, क्योंकि रियल लाइफ में हर आदमी एक जैसा होता नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगा जो एक जैसा हो। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, एक भी सृष्टि की चीज उठाकर लाइए जो दूसरे से मैच करता हो। अगर आग गर्म है तो बर्फ ठंडा है, पहाड़ ऊंचे हैं तो समुंदर गहरा है, हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है, हर प्राणी दूसरे प्राणी से अलग है, घर के चार मेंबर है आपकी सोच अलग है, ये यूनिफॉर्मिटी और लेफ्टिस्ट वालों की तरह है कि सबकी जिसकी लंबी अंगुलियां है काट दो और सब बराबर अंगुलियां हो जाएंगी, ये सोच हमारा नहीं रहा। इसीलिए हमारे लिए शांति का जितना महत्व है उतना ही महत्व, ब्राह्मण का जितना महत्व है उतना क्षत्रिय का भी महत्व है। ज्ञान का जितना महत्व है शक्ति का भी उतना ही महत्व है। जो देश इसको समझ जाता है, जो सोसाइटी इसको समझता है, जो व्यक्ति इसको समझता है, वो बहुत आगे बढ़ जाता है। इसीलिए वेद में कहता है यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यम चौ चरत सह। जिस भी समाज में, जिस भी देश में ब्रह्म शक्ति मतलब ज्ञान की शक्ति, क्षत्र शक्ति, फिजिकल पावर दोनों साथ साथ चलते हैं, वो देश वो समाज ज्यादा सुखी, ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा ज्यादा स्टेबिलाइज्ड होता है। अगर आप बहुत ज्यादा धार्मिक हैं पर आपकी प्रोटेक्टिव, आपका डिफेंड बहुत कमजोर है, तो आपका सर्वाइवल भी बहुत कम होता है कि चांस भी। आप पॉलिटिक्स में देखिए, जितने सीधे साधे देश थे जिन्होंने भी अपनी शक्ति को कम आंका, शक्ति को कम ध्यान दिया अपनी तथाकथित बड़प्पन के कारण, वो सब दूसरों के द्वारा हड़प लिए गए या आज भी तरस रहे हैं, सैकड़ों सालों से, 50 साल से, सैकड़ों तालों से छटपटा रहे हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों का सोच था सबके एक बैलेंस होना चाहिए, शक्ति की, वो ज्ञान की शक्ति हो, बाहुओं की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, किसी भी शक्ति को इग्नोर मत करो, किसी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत करो, ना किसी को आप बहुत ज्यादा कम आंको, सबकी अपनी स्थान है। अभी आपने श्रावणी पूर्णिमा सेलिब्रेट किया, जहां आपने विद्या के, ज्ञान के, ब्राह्मणों के पर्व था, ज्ञानियों के, पढ़ने लिखने से जुड़ने वाले लोगों से के साथ उसका संबंध था, स्वाध्याय पर्व। ये दशहरा है क्षत्रियों का, अस्त्रों का, शस्त्रों का, अपनी शक्ति को परखने का, मांझने का, समझने का, उसको रेस्पेक्ट करने का। तो विजया दशमी छात्र धर्म का प्रतीक है, और जो भी देश सोसाइटी इसको इग्नोर करता है, इसको कम मांगता है, उसकी चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी कम होती है। और आप इतिहास में देखिए, आप 5000 साल का इतिहास पढ़े, 10000 साल का पढ़े, 5 साल का पढ़े, 50 साल का पढ़े, जो समझदार नहीं है, सो कॉल्ड आइडियोलॉजी के लेकर रहता है, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए आज भी आप देखेंगे दशहरे के दिन लोगों के घर में जो भी उनके घर में अस्त्र शस्त्र होते हैं उसको ला करके धो पूछ करके साफ करके पूछते हैं। अब वो अलग बात है कि अंदर अब ताकत नहीं है, हम गुलामी की भावना में है, पर वो पूजने की परंपरा बची हुई है। वो तो आजकल तो हम हर चीज पूछते हैं, अब तो वेद भी कोई नहीं पढ़ता है, दूसरों के घर में जाओ वेद पूजा तो छोड़िए, अब गीता भी पूजी जाती है। मुझे पता है जब मैं भी छोटा था, हमारे घर में जो ठाकुर घर पूजा घर होता था उसमें बाकी सारे फोटो होते थे, उसमें गीता भी होती थी, तो हमें कहा जाता था रोज सुबह उठ के नहा धो करके पूजा करो, तो उस गीता में भी पानी छिड़कना है, उसमें भी चंदन लगाना है, उसमें मंत्र पढ़ना है, फिर इसको 2-4 साल के बाद उसको दिमक खा जाते थे, फेंकते थे, नए गीता रखते थे। ये हमारा ट्रेडिशन रहा, यही हमारा स्वरूप है, किताबें पढ़ने के लिए नहीं, पूजने के लिए, अस्त्र चलाने के लिए नहीं, पूजने के लिए, ये हम बन चुके हैं। वर्षा के बाद जो ट्रेडिशन रहा, बारिश के मौसम के बाद ज्यादातर, क्योंकि बारिश के मौसम में लोग अपने अपने घर में रहते हैं 4 महीनों तक, इवन जहां युद्ध होता है वहां भी नहीं होता है, शत्रु पक्ष भी उस समय ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि प्राचीन काल में उसके लिए कोई सिस्टम नहीं था, आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। इवन जहां लड़ाइयां होती थी तो बारिश के मौसम में उसको रोक दिया जाता था, जैसे रात को लड़ाई नहीं होती थी, बारिश के मौसम में भी लड़ाई नहीं होती थी, तो अस्त्र शस्त्र जंग लग जाते थे। ये शरद का महीना ऑटम ठीक बारिश के बाद आता है, तो उसको धो पोंछ के साफ करके दोबारा उसको रिवाइव करते थे, चमकाते थे, शस्त्र प्रदर्शनी होती थी, वीर अपने शौर्य दिखाते थे, शस्त्र अस्त्र का ज्ञान दिखाते थे। प्राचीन काल में जब आप गुरुकुल में जाते हैं, आप महाभारत रामायण तो कम से कम जानते हैं, और कुछ चीज जानते ही नहीं जानते। राम भी गुरुकुल में गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न या कृष्ण वगैरह जिसकी कहानियां आप पढ़ते हैं। अब ये तो कहते हैं कि कृष्ण और सुदामा दोनों दोस्त थे गुरुकुल में, पर ये भूल जाते हैं कि कृष्ण कौन से गुरुकुल में गए, क्या पढ़ा। संदीपनी के गुरुकुल में गए, संदीपनी जी उनके गुरु हैं। तो गुरुकुल में क्या सीखते थे, वो वेद भी सीखते थे, उपनिषद भी सीखते थे, धर्मशास्त्र भी सीखते थे, व्याकरण भी सीखते थे, अर्थशास्त्र भी सीखते थे, लड़ाई की विद्या भी सीखते थे। ये सब सीखना पड़ता था। जो क्षत्रिय है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज करेगा, जो बाकी लोग हैं वो अपने डिफेंड करेंगे सुरक्षा के लिए। राम ने संकल्प किया कि मैं धरती को दुष्टहीन करूंगा। राम बड़े साधारण व्यक्ति हैं, बड़े सिंपल व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल है। भवभूति लिखते हैं कि राम का चरित्र ऐसा है कि पत्थर से भी ज्यादा कठिन है जब जब जरूरत पड़ती है, फूलों से भी बड़ा कोमल है जब जरूरत पड़ती है। राजा को ऐसे होना चाहिए होता है कि जब दुष्ट हो उसके सामने उसका हृदय पत्थर की तरह मजबूत हो, निर्णय लेने में, दंड देने में। और जो कोई निरीह सामान्य प्रजा हो, दुखी हो, उसके दुख को देख करके उसका दिल फूलों की तरह पिघलना, कोमल होना चाहिए कि उनका सल्यूशन दे सके। कृष्ण जीवन भर अस्त्र नहीं उठाया, पर किसी को भी नहीं छोड़ा अस्त्र उठाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, जहां जरूरत पड़ी उठाए। पूरी गीता का उद्देश्य यही था कि तुम्हें अपने छात्र धर्म को तुम छोड़ नहीं सकते हो। कृष्ण ने युद्ध के लिए नहीं भड़काया, अर्जुन को उसके धर्म याद दिलाया। तुम्हें अगर नहीं लड़ना था, तुम्हें इतना शौक है आत्मज्ञान के प्रति, तुम्हें अगर इतना शौक है कि आत्मा को समझने के लिए, तो तुम्हें सन्यासी बनना था, तुम्हें ब्राह्मण बनना था, या तो तुम्हें राजकुमार होते हुए भी तुम्हें जंगल में रहना था, या तो तुम्हें पहले डिसीजन लेना चाहिए था कि नहीं, मुझे लड़ाई झगड़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल साधु व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल धर्माचरण करूंगा। पर उस समय तो तुम्हारा दिल में कुछ भी नहीं था, राज्य चाहिए राज्य चाहिए, कौरव छीन ले गए, उनको मारना है, पिटना है, सब कुछ करना है। अब सामने जब रिश्तेदार पड़ गए तो तुम्हें सारे ब्रह्मज्ञान दिखता है। मतलब आप सैनिक को भेजते हो लड़ाई करने के लिए मैदान पर, सैनिक की इच्छा नहीं लड़ने के लिए तो मत जाए, किसने रोका है? आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। आप व्यापारी बनो, आप ब्राह्मण बनो, आप शूद्र बनो, जो बनना है बनो, पर आपने निर्णय लिया कि आपको सैनिक बनना है, और देश की रक्षा के लिए आपको मैदान पर भेजा जाता है। सामने लोगों को देख करके आपका दिल पिघलता है कि नहीं मैं कैसे लड़ूं, तो आप तो खुद मरोगे, करोड़ों लोगों को मरवा के रहोगे। क्योंकि सामने वाला तुम्हारे तरह पढ़ के नहीं आया है। बड़े मजेदार बात देखिएगा, जो मुगल आए राजस्थान से, जो राजपूतों के साथ लड़ाइयां हुई, आप कभी राजपूत और मुगलों की लड़ाइयों को देखिए, हिस्ट्री देखिए। यद्यपि मध्ययुग में हमारे शास्त्र इतने ज्यादा लोग मानते नहीं थे, उनको पता नहीं था, उसके बावजूद भी खून में वो बात बैठी हुई थी कि युद्ध का जो नियम है, युद्ध का क्या नियम था, हमारे यहां जो सिखाया गया था ट्रेडिशनली कि आप स्त्री पर आप तलवार नहीं चलाओगे, बच्चों पर नहीं चलाओगे, जिसने जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो आप उसको मार नहीं सकते, उसके साथ लड़ नहीं सकते हो, अंधेरे में आप मार नहीं सकते हो, छुप के आप मार नहीं सकते हो, पीछे से आप मार नहीं सकते हो, किसी ने कहा सॉरी सरेंडर कर दिया कि मेरी गलती हो गई तो आप उसको मार नहीं सकते हो। तो हमारे राजपूत लोग उसी तरह पले बढ़े थे, उसी तरह व्यवहार करते थे। मुगलों के इस तरह शिक्षा नहीं थी, ऐसा शास्त्र नहीं था, उनको ऐसा कुछ नहीं सिखाया था, उनको जीतना था तो जीतना था, रात हो दिन हो, औरत हो पुरुष हो, बच्चा हो बुढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जरूरत पड़े माफी मांगो, जब जरूरत पड़े तलवार चलाओ। तो क्या हुआ, आप इसको बेवकूफी कहिए या नासमझ ही कहिए या पुरानी, शास्त्र की चीज को ठीक समय पर प्रयोग करने की क्षमता ना होने की कौशल कहिए, जो भी कहिए, राजपूत अपने उस धर्म के साथ टिके रहे और हारते गए, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। पहले तो एक राजपूत दूसरे राजपूत से लड़ता था, दोनों नियमों का पालन करते थे, पर जो मुगल आए वो एक दूसरे कल्चर से थे, दूसरे बैकग्राउंड से थे, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। मैं अपने चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, वो कुछ भी करने को तैयार हुए, हम हारते गए मरते गए। इसलिए शास्त्र में बड़ी मजेदार बात कही जी, कहा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम्, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। शास्त्र उस व्यक्ति के लिए बेकार है जिसकी खुद की दिमाग नहीं है, जो अपना दिमाग प्रयोग नहीं करता, जो अपनी प्रज्ञा का उपयोग नहीं करता, उसके लिए शास्त्र बेकार है। फिर शास्त्र उसकी मरने का कारण बनेगा, उसका दुख का कारण बनेगा, उसकी बर्बादी का कारण बनेगा, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति को दर्पण ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकता। इसी तरह शास्त्र उस व्यक्ति को कभी नहीं हेल्प कर सकता जिसके दिमाग में ताला लगा होता है, जो समय स्थान काल परिस्थिति के हिसाब से अपना दिमाग प्रयोग नहीं करता, और वही कारण है कि हमारे राजपूत हारते गए। एक दूसरे पक्ष में है चाणक्य, चंद्रगुप्त, समर्थ रामदास, शिवाजी। इसका अर्थ नहीं कि वो बड़े क्रूर व्यक्ति थे, वो दिल से ही इतने ही कोमल थे, वो प्रजाओं के प्रति उतने ही, वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रजावत्सल राजाओं में गिने जाते थे, जो अपने प्रजाओं के छोटी छोटी दुख दर्द के लिए तड़पने वाले राजा होते, पर शत्रु के लिए, दुष्ट के लिए, आतंकवादी के लिए, आतताई के लिए उतने ही क्रूर कठोर व्यवहार करते थे। वो कृष्ण और अर्जुन हो, राम और वशिष्ठ हो, चाणक्य चंद्रगुप्त हो, रामदास शिवाजी हो, हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे। तो जिन्होंने भी अपनी प्रज्ञा का प्रयोग किया, शास्त्र को स्थान काल पात्र के अनुसार प्रयोग करना सीखा, वो जीवन में दूसरों को भी सुख देता है, खुद भी सुखी रहता है। नहीं तो भीष्म जैसा प्रतिज्ञा करके महान होने वाले लोग तो खुद तो महान बन जाते पर करोड़ों लोगों को मरवाने के लिए छोड़ जाते हैं। आज भी आप गर्व से कहोगे भीष्म देखो, उसने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, पापा को जो उन्होंने वचन दिया था उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, करते रहो तारीफ। पर पूरी महाभारत की लड़ाई का जड़ कौन है? महाभारत की यही, भीष्म की यही प्रतिज्ञा कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि सिंहासन के साथ खड़ा मिलूंगा, सिंहासन रेप करे तो भी मैं उसके साथ हूं, सिंहासन में बैठने वाला चोर हो तो भी मैं उसके साथ हूं। तो हुआ वही। तो समस्या है कि जब आप परिस्थान काल पात्र के अनुसार, और खास करके जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, आप शास्त्र विचार को, शास्त्रीय ज्ञान को प्रयोग करना नहीं जानते, तो वो आपके लिए खतरनाक होने लगता है। दूसरी चीज, ये दशहरा का एक दूसरा पक्ष है, वो थोड़ा आध्यात्मिक है। अभी 9 दिन तक हमने नवरात्र मनाया, लोग उपवास रखते हैं, और उपवास रख करके, वैसे तो ये भी बड़ी विडंबना है कि हमारा हर चीज में कुछ ना कुछ, हम उपवास का मतलब होता है या तो भूखा रहते हैं, जो भी अर्थ आप करें, वैसे तो उपवास का अर्थ है कि भगवान के पास रहना, भगवान के उपवास, उप मतलब पास, वास मतलब बैठना, अब भगवान के पास थोड़ी, भगवान कोई आगे पीछे घूमता थोड़ी है कि आप उसके पास बैठ जाएंगे, वो तो आपके अंदर है, बाहर जाने की थोड़ी जरूरत है। पर क्योंकि साल भर, जिंदगी भर हम बाकी चीजों के रिलेशनशिप में ज्यादा होते हैं। मैं आपके पास कितना भी क्लोज बैठा हुआ हूं, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, आपको थोड़ा ही मेरे से कोई मतलब होता है। फिजिकली क्लोजनेस कोई मायने नहीं रखता। आपके मन में तो कोई दूसरी चल रहा है, किसी के बारे में आप सोच रहे हैं। आप 10,000 किलोमीटर दूर बैठे पर आपके दिमाग में वो चल रहा है, उसकी उपासना आप करते जा रहे हैं। क्योंकि साल भर हम अपनी जिंदगी के सामाजिक व्यस्तता में इतने व्यस्त रहते हैं तो नजदीक वाले व्यक्ति को भी हम भूल जाते हैं। कभी ना कभी कोई मौका तो मिले, कम से कम आपको रिमाइंड कराए कि भाई इसके बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है। आपके पर्व, आपके त्योहार आपको याद दिलाते हैं कि कभी कभी भगवान का भी साथ कर लिया करो। वो तुम्हारे अंदर है, बस उसको फील करने की जरूरत है, उसको रियलाइज करने की जरूरत है। तो शरद ऋतु वर्ष में सबसे सुंदर ऋतु है। आकाश साफ होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, एटमॉस्फेयर क्लियर होता है, वर्षा समाप्त हो गई होती है, लोगों के खेतीबाड़ी का काम पूरा हो चुका होता था। तो कुछ समय ईश्वर के लिए, भगवान की भक्ति में विलीन हो जाओ। खाना पीना को काउंट मत करो। अब क्या है, अब ऐसा नहीं होता है। नवरात्र आया, उससे पहले तैयारी होगी उपवास की, मतलब भूखा रहने की। क्या तैयारी? अमुक आटा लाओ, अमुक तेल लाओ, अमुक सब्जियां लाओ। अब दिन भर उपवास, रात को तली तली पुड़ियां सब्जियां खाई जाएंगी। दिन भर जो भूखा है वो भूखा ईश्वर के लिए नहीं, वो जो उपवास है कि नजदीक होना। और जो भूखा रहता है उसको पूछिए कि उसके दिमाग में किसकी नजदीकीपन चल रहा है कि कब खाना खाऊंगी। खाने का उपवास चलता रहता है पर नवरात्र चलता रहता है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय हमारे यहां अनाज कम हुआ करते थे, तब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो हम गेहूं की शॉर्टेज होती थी तो खरीदते थे, अमेरिका से खरीदते थे। और पैसा लेकर भी ये अमेरिका वाले हमें सड़े गड़े गेहूं भेजते थे, कीड़े वाले गेहूं भेजते थे। बड़ा ह्यूमिलिएशन होता था। तो शास्त्री जी को पता चला, बोले बंद करो। तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, वैज्ञानिकों को जोड़ के बोला कुछ करो हमारे देश में, खेती में उपजाऊ बढ़े। बोले तब तक मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं हफ्ते में एक दिन उपवास रखें। तो लोगों ने उपवास रखा। अब आगे की बात सच है, जोक है, नरेशन है, पर सीखने लायक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये सत्य, बहुत सारे फैक्चुअल लोग आ जाएंगे, मुझे कभी कभी टोक देते हैं आपने ये फैक्चुअल ही नहीं बोला। मैं हिस्ट्री सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं नरेशन के द्वारा कुछ बातें बताना चाहता हूं। वो हिस्ट्री के मेरे मतलब क्या होता है, पर बहुत सारे टोक देते हैं। तो मैं टोकने वालों को जरा बता दूं कि मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं कि सच क्या हुआ था, पर समझने लायक ये थी कि लोगों को उपवास रखने को कहा गया तो लोगों ने उपवास रखा। भाई कल शनिवार है, उपवास रखना है, शुक्रवार से तैयारी शुरू। भाई आटा तेल डाल के दिन भर भूखा रहेंगे तो रात को तो थोड़ा पूरी हलवा सब होनी चाहिए ना। तो शास्त्री जी ने 2-4-6 महीने के बाद कहा कि बंद करो उपवास, आप अपनी जिंदगी जियो, हम कर रहे हैं जो करना है। तो हम उपवास के नाम पर भी वो उस खाने पर ही उपवास करते हैं। नवरात्र अपने शरीर को मन को शुद्ध करने के लिए था। आप भोजन खाते हैं नहीं खाते हैं, भक्ति में डूबे डूबे आपका खाना छूट जाता है नहीं छूटता है, ये मैटर नहीं करता। छूट गया तो छूट गया। कभी कभी ऑफिस में आप काम में बिजी हो जाते हैं, आपका लंच टाइम 12 बजे होता है, कभी कभी 2 बज जाता है, कभी कभी 5-6 भी बज जाता है। घर में जब आपकी कोई शादी ब्याह की प्रोग्राम होता है या कोई फेस्टिवल या कुछ ऐसे बड़ा काम पड़ता है तो आपको 12 बजे खाने की आदत है, उस दिन 4 बज चुका है तब भी भूख नहीं लग रहा है। ये उपवास है। ईश्वर की भक्ति में आप डूब गए, याद ही नहीं चला कभी कब खाएं, दिन भर बीत गया तो बीत गया। ये उपवास है। पर अगर आप नोइंगली खाना छोड़ते तो आपका नजर उसी में टिका रहता है, कब खाऊं। फिर ऐसा नहीं होता है, नवरात्र के समय तो ज्यादा सामान बिकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप ह्यूस्टन में देखिए सब इंडियन स्टोर वाले उन्हीं दिनों ज्यादा आपको सेल में देते हैं दाल चावल, खूब खाओ। अपने अंदर जो सत्व रज तमोगुण है उनको नियंत्रित करें। किसी साधु ने, किसी विद्वान ने इस नवरात्र को ऐसी व्याख्या की, बोला हमारे अंदर, ये मेरा विचार नहीं है, मैं किसी की बात को चोरी करके आपके सामने रखता हूं, कि हमारे अंदर जो सत्व रज तमोगुण है इन तीनों गुणों को नियंत्रित करना, तीनों एक एक गुण के लिए तीन दिन की साधना करने की है। ये तीनों गुण खराब नहीं है, ये कोई अच्छे नहीं है, ये नेचर है, ये पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, ये तो हमारे साथ रहेंगे। पर कौन इनको साध पाता है? तमोगुण हिंसा द्वेष बुराइयों का प्रतीक है, ताकत की शक्ति की प्रतीक है। जैसे अभी हम शक्ति की बात कर रहे थे, तमोगुण है, पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तमोगुण के कारण तो नींद आती है, तो आप कहेंगे नहीं ये तमोगुण है मैं नहीं सोऊंगा, तब तो आप तो पागल बन के घूमेंगे तीन महीने के बाद अगर रात भर नहीं सोए तो। शक्ति ताकत आपको तमोगुणी बनाता है, पर शक्ति ना रहे तो समाज में जिंदा रहना मुश्किल होता है। तो शक्ति की प्रतीक है दुर्गा काली, जो भी कहिए, जो पुराण की पौराणिक कथाओं में माइथोलॉजी में जैसे आप पढ़ते हैं। रजोगुण है जो चंचल है, अब लक्ष्मी को भी चंचल बोलते हैं, धन का से जुड़ा हुआ है। और सत्वगुण विद्या है, ज्ञान है, बोध है, समझ है, सरस्वती जिसके पुराणों में प्रतीक है। ये तीनों को साधना, और जब व्यक्ति इन तीनों को साध लेता है, इन तीनों गुणों से ऊपर होता है, तो उसको हम त्रिगुणातीत कहते हैं। तब वो विजयादशमी सेलिब्रेट करता है, विजय पाया अपने अंदर के राक्षसों पर, अपने अंदर की बुराइयों पर, अपने अंदर की जो विषमताएं हैं उस पर विजय पाता है। तो जो जीत ले वो सेलिब्रेट करता है विजयादशमी, नहीं जीते तो भी सेलिब्रेट करते हैं कि हम प्रोसेस में है। ऐसा नहीं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ राक्षसों को मारते हैं, रावणों को कंसों को मार करके सेलिब्रेट करते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को भी मारते हैं। राक्षस कोई 10 सर वाला, 18 सर वाला, लंबा चौड़ा, 5 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा नहीं होता है। राक्षस एक टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, एक मानसिक वृत्ति है, जो हमें भी नष्ट करता है, समाज को भी नष्ट करता है। वो एक सोच है। आज भी आपको राक्षस दिखते हैं जो बिना मतलब के लाखों लोगों को मारते हैं, धर्म के नाम पर मारे, किसी भी नेशनलिज्म के नाम पर मारे, किसी भी चीज के लिए मारे, लाखों लोग मारते हैं, टेररिस्ट होते हैं। वो राक्षस है, असुर है, वो एक विचार का नाम होता है, वो हमारे सोच है, समझ है। मैं भी राक्षस बन सकता हूं, जब मैं क्रूर बन जाता हूं, जब क्रूएल बन जाता हूं, तो किसी को अपना नहीं समझता हूं, किसी के लिए भी मैं कुछ करने को तैयार होता हूं। तो उन बैड क्वालिटी को, बुराइयों को जब मारने के लिए हम तैयार होते हैं और उन पर जीत हासिल करते हैं, तो फिर हम उसको विजय प्राप्त करते हैं, तो विजयादशमी सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है जीवन में जो लोग अधर्म का आचरण करते हैं, बुराई को अपना अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, वो उसमें शुरुआती दौर पर जीत पाएं, पर आखिर में सत्यमेव जयते होता है ना, जो सच है, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसी की जीत होती है। एक छोटी सी बात करके समाप्त करूंगा। मनुस्मृति में एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, कहते हैं अधर्मीणि धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलास्तु विनाश्यति। जो अच्छे आदमी उनको भी शिकायत है, वो इसीलिए शिकायत है, इनको अच्छा ही उनको पसंद नहीं है, मजबूरन करना पड़ता है। बुरे लोगों को भी ये मजा आता है, कि जो भी बुरे लोग हैं, आप कहते हो बुरे लोगों को बुरा भोगना पड़ता है, अच्छे लोगों को अच्छा भोगना। देखो मैं तो बड़ा ईमानदार ठहरा, दिल्ली एमसीडी में काम करता था वगैरह वगैरह, किसी भी एमसीडी में काम करता था, अमुक सरकारी ऑफिस में काम करता था, 40 साल नौकरी किया। देखो मेरा छोटा सा घर है, मेरे बच्ची की शादी के लिए भी पैसा ज्यादा नहीं है। और देखो ये आप तो कहते हो ईमानदार रहना अच्छी बात है, देखो मेरे बगल में एक क्लर्क था, करोड़ों कमा रखा है, चार चार बिल्डिंग है, देखो बेटी की शादी की उसने इतनी लंबी गाड़ी दी, दहेज में दी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और अब कहते हो ईमानदार रहो तो खुश है। वैसे ऐसे लोग जो ईमानदार रह के शिकायत करते हैं वो ईमानदार नहीं होते, वो डरपोक होते हैं। उनकी ईमानदारी उनके दिल से नहीं निकलती, उनको डर लगता है पुलिस ना पकड़ ले, इसीलिए ईमानदारी वो ईमानदार रहे, पर दिल में हमेशा उनको चुपता रहता है। ये देखो बेईमानी करके बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, देखो वो बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पाता हूं। उनको अगर कोई आश्वासन दे दे भाई कोई कुछ नहीं होगा, वो बेईमान से भी बड़ा बेईमान बनेंगे। वो डरपोक कायर लोग होते हैं जो ईमानदार होकर दूसरे बेईमानों से जलते हैं। तो बेईमान को भी लगता है कुछ नहीं होता है, ईमानदार को तो तथाकथित सो कर ईमानदार है जो बेईमानों से जलता है, उसको भी लगता है ये क्या मैंने गड़बड़ किया, क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो उसके लिए मनु कहते हैं कि अधर्म से तो हमेशा तुम्हारी तरक्की होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अधर्मेणा एधते तावत, तुम जरूर बढ़ोगे, खाली बढ़ोगे नहीं, आगे जाकर खूब बढ़िया बढ़िया चीजें देखोगे, पाओगे, भोगोगे, एंजॉय करोगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ऐसा भी नहीं है तुम अपने सारे दुश्मनों को भी पस्त करोगे बेईमानी से, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पर आखिर जब तेरा विनाश होगा तो समूल होगा, विथ रूट होगा। पर जो ईमानदार है हो सकता है वो लाइफ में बहुत कुछ ना अचीव करे, पर वो धीरे पानी की तरह जीवन को बनाए रखेगा, अपने आगे की जीवन को बनाए रखेगा। देखिए सज्जनों, विजयादशमी शत्रुओं पर जय पाने की है, वो शत्रु आपके अंदर के है या बाहर का है, उसको आप जय पाते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।